मुक्त गगन के पंछी हो, तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। फंसना नहीं किसी डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। फंसना नहीं किसी डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो। नहीं कितने आए आंधी तूफान, पल भर तुमको रुकना नहीं। मंजिल तेरे करीब है, राही तुझको थकना नहीं। कितने आए आंधी तूफान, पल भर तुमको रुकना नहीं। साथ तुम्हारे नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो।
ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज प्रातःकालीन इस समागम में जो नया सीरीज चल रही है उसकी दूसरी कड़ी, दूसरा पार्ट आज फ्रीडम फ्रॉम पास्ट संस्कार, पुराने संस्कारों से स्वतंत्रता, मुक्ति, छुटकारा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि स्वतंत्रता, किसी भी बंधन में अगर कोई व्यक्ति बंधा हुआ है, उस बंधन से निकलना या निकालना ही स्वतंत्रता है, मुक्त होना ही स्वतंत्रता है। और आज संस्कारों की बात हो रही कि पुराने संस्कारों से मुक्ति, तो संस्कार को हम सबसे पहले जानेंगे। बाबा ने हमें बहुत ही सरल भाषा में संस्कार क्या चीज है उसकी परिभाषा बताए हैं। आत्मा मन बुद्धि और शरीर सहित जो कर्म करते हैं, और जो कर्म करते हैं वो बार बार करते हुए आत्मा के अंदर कोई रील के तरह लिपट जाते हैं, उसको ही साधारण शब्दों में संस्कार कहा जाता है। अच्छे कर्म का अच्छे संस्कार, साधारण कर्म का साधारण संस्कार, व्यर्थ का व्यर्थ, निगेटिव का निगेटिव संस्कार बनते हैं आत्मा के अंदर। पतंजलि योगपीठ में ये बताते हैं कि आत्मा के अंदर पूर्व जन्म का भी संस्कार होता है, तो इस जन्म का भी और आगे आने वाली जन्म का भी संस्कार होता है। सनातन हिंदू धर्म में, सनातन हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार की के बारे में बताया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 प्रकार के संस्कार के बारे में बताया है उसमें। जो हम थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल हमारा दूसरा रहेगा, जो ओरिजिनली जो हमारी टॉपिक है। तो 16 प्रकार के सनातन हिंदू धर्म के पहला संस्कार है गर्भधारण संस्कार। जब बच्चा गर्भ में आता है उस समय उनको संस्कार, वो संस्कार किया जाता है कि बच्चा गुणवान हो, अच्छा हो, चरित्रवान हो, उसके लिए कहते हैं, उसको कहते हैं गर्भधारण संस्कार। उसके बाद है पुनर्वंश संस्कार कि बच्चा स्वस्थ हो, मस्त हो, मन से भी और तन से भी स्वस्थ हो। उसके बाद है सीमंता संस्कार, ये सब संस्कृत संस्कृत का वो है नाम, सीमंता संस्कार। सीमंता संस्कार अर्थात बच्चा सुसंस्कारी हो, कुसंस्कारी ना हो। पहले वाला को हम देखते हैं गर्भधारण संस्कार, जो बच्चा अच्छा हो, गुणवान हो, तो इस ज्ञान से क्या कनेक्शन है उसका? जब भी हम कहीं सेवा पे जाते हैं तो पहले क्या करते हैं? भूमि तैयार करते हैं। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे पहले भूमि तैयार करो, कि बाबा का बच्चा, जितने बाबा का बच्चा है वो बाबा के पास आ जाए, बाबा का बन जाए। भूमि तैयार करते हैं, ये क्या होगा? तो गर्भधारण संस्कार। दूसरा है पुनः वंश संस्कार, अर्थात जो भी बाबा के बच्चा है, अच्छा हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, एक बाबा के ऊपर पूरा भरोसा रख के चलने वाला हो। तीसरा हमने सुना सुमंता संस्कार, अर्थात सुसंस्कारी हो। तो जो ब्राह्मणों का संस्कार है, जो ब्राह्मणों का कल्चर है, वही कल्चर इस बच्चा में आए, ऐसे बाबा ने हमें सेवा करने के लिए सिखाया है। चौथा है जातकरण संस्कार। सुमंता संस्कार 4-6-8 महीना के जब गर्भ में बच्चा रहता है उसी समय किया जाता है, और जातकरण संस्कार उस समय किया जाता है जब बच्चा जन्म लेता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्मने के बाद में शहद और घी चटाया जाता है और उनको जातकरण किया जाता है कि इस कुल के ये जन्म लिया है। वैसे ही ब्राह्मण परिवार में भी जब जन्म लेते हैं तो क्या कहते हैं? आप तो देवात्मा हो, आप तो महान आत्मा हो। हम अगर कुछ गंदे चीजें खाते हैं तो ये हम बताते हैं ना ज्ञान में कि ये तो देवताओं के ऊपर भोग नहीं लगते, तो हम आप कैसे खा सकते हैं? ऐसे ब्राह्मण परिकुल में भी जातकरण संस्कार किया जाता है। फिफ्थ है नामकरण संस्कार। 7 डेज कोर्स होने के बाद में नामकरण संस्कार, अर्थात दुनिया में नामकरण संस्कार करते हैं तो वहां पे 11 दिन के बाद में नाम रखते हैं उनका। वैसे इस ब्राह्मण परिवार में नामकरण संस्कार अर्थात आप उस संसार के नहीं, ब्राह्मण संसार के हो। अब शूद्र नहीं ब्राह्मण हो, अब साधारण नहीं असाधारण हो, इस ईश्वरीय परिवार के हो। हम उनको क्या करते हैं? स्मृति दिलाते हैं, याद दिलाते हैं। सिक्स्थ है निष्कर्म संस्कार। निष्कर्म संस्कार अर्थात 4 महीना के बाद बच्चा को घर से बाहर लाया जाता है, लेकिन यहां पे निष्कर्म संस्कार क्या करते हैं? विधि पूर्वक लिया जाता है, लेकिन यहां पे बच्चा जन्म लेते ही घर से बाहर जाते हैं, अर्थात बाबा बाबा बोलना शुरू करते हैं और बाबा का सेवा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में है अनुप्रास्थ संस्कार, अर्थात सात आठ महीना के, छह और आठ महीना के बीच में बच्चों को अन्न खिलाया जाता है। वैसे ब्राह्मण परिवार में जब बच्चों को, जब बाबा के घर में आते हैं और पहले रोज ही बहनों से मिलती है, टोली और मीठी बोली और एक गिलास पानी, तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। इसमें इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थ है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार में बच्चा को क्या करते कि माता पिता के जो के द्वारा जो बाल आया रहता है उस बाल को उतारते हैं। बाल उतारने से जो सिर के जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वो भी नष्ट होता है और ये जो सिर की जो चमड़ी है वो भी मजबूत होता है। ब्राह्मण परिवार में मुंडन संस्कार अर्थात क्या? पुराने संस्कार को छोड़ना। उनको याद दिलाते हैं ब्राह्मण मुंडन संस्कार अर्थात उनको याद दिलाते हैं, तुम उस दुनिया के नहीं इस दुनिया के हो, तुम्हारा परिवार ये है। उन्हें तीन पिता का परिचय देता है, एक लौकिक, एक पारलौकिक, एक अलौकिक। तो लौकिक पिता तो सिर्फ एक जन्म के लिए होता है, लेकिन अलौकिक और पारलौकिक पिता तो जन्म जन्मांतर के लिए होता है। तो ये है कौन सा संस्कार? हमारा 84 जन्म कनेक्शन रहता है उनके साथ। तो ये हमारा कौन सा संस्कार हो गया? मुंडन संस्कार। नाइन्थ है विद्या अर्जन संस्कार। बच्चों को विधि पूर्वक गुरुवार के दिन इस स्कूल में बिठाया जाता है, जो कि बाबा मुरली में भी कई बार चर्चा करते हैं कि बच्चों को गुरुवार के दिन ही स्कूल में बिठाते हैं। तो विद्या अर्जन के संस्कार अर्थात 7 दिन के बाद में बाबा के बच्चे, इतना साल इंतजार करनी नहीं पड़ती है, 7 दिन के बाद में बाबा अपने बच्चों को विद्या अर्जन करने के लिए अर्थात मुरली सुनने के लिए परमिशन दे देते हैं। 10th है कर्णवेदन संस्कार। कर्णवेदन संस्कार अर्थात बच्चों को कान में होल करते हैं। हमारे कान में भी है। कान में होल करना अर्थात ये होल से जो है ना, कान के होल से दर्द ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन एक्टिव होता है, तेज होता है, तीक्ष्ण होता है बुद्धि, शालीन होता है बुद्धि, उसमें इसे बताते हैं। यहां पे बुद्धि शालीन कैसे होगा? यहां पे बुद्धि शालीन होगा मनन से, चिंतन से, एकांत में जाने से। सुनने तक ही समाने सीमित करने से नहीं होगा, हमको चिंतन करना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, तभी हमारी बुद्धि शालीन होगी, तीक्ष्ण होगी। 11th है उपनयन संस्कार। ये उपनयन संस्कार में गुरु के पास ले जाते हैं और गुरु के पास ले जाके मंत्र उच्चारण के साथ में स्नान, कई सारे मेटेरियल से उनको स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद में उनको जनेई देते हैं। ब्राह्मण परिवार में उपनयन संस्कार अर्थात क्या? जनेई पहनना अर्थात क्या? जनेई पहनने के बाद उस कुल के वो गिना जाता है, उस परिवार के गिना जाता है, वो अपने देव कुल को, देवताओं को पूजा कर सकते हैं, मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। तो उपनयन संस्कार अर्थात हम सो हम की मंत्र को सदा स्मृति में रखना। आगे है वेद आरंभ संस्कार। उसके बाद में बच्चों को वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को वेदों का भेद और शास्त्रों का सार 7 दिन के बाद में ही सुनाना शुरू कर दिए हैं। और जो बाबा हमें सुनाते हैं वो हम दूसरों को सुनाए बिगर रह नहीं सकते हैं। हमें इतना लंबा समय इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में केशांत संस्कार। केशांत संस्कार अर्थात क्या? केशांत संस्कार अर्थात फिर से बच्चा के सिर के बाल को मुंडन कराते हैं, टकला करते हैं। पहले मुंडन में माता पिता के जन्म वाला बाल उतारा, टॉक्सिन्स उस समय भी उतारा, इस समय भी टॉक्सिन्स को उतारा, बाल उतारा। अर्थात पहले तो उस परिवार से इस परिवार के तरफ लाया कि इस परिवार के हो तुम, इस परिवार के नहीं हो। अभी इस परिवार में भी किसी से लगाव झुकाव नहीं होना चाहिए। अर्थात केशांत संस्कार। समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार अर्थात समाज में जीने की कला सिखाते हैं, समाज में जीने की ढंग सिखाने की संस्कार कराते हैं। तो समावर्तन संस्कार अर्थात रहो जल में लेकिन जल से न्यारे, कमल के समान। बाबा भी हमें इस प्रवृत्ति में रहते, इस समाज में रहते, इस परिवार में रहते, लेकिन न्यारा प्यारा होके रहना है, ये हमें शिक्षा दी है। आगे है विवाह संस्कार। तो हम सब ने तो विवाह कर लिए हैं कि करना बाकी है। 7 दिन के क्लास के बाद, निश्चय होने के बाद, हमारे बाबा के साथ सगाई और विवाह साथ में हो जाती है। लेकिन जो समर्पण का विधि है, कुछ दिन बहने ज्ञान में चलने के बाद, सेंटर पर रहने के बाद ही विवाह संस्कार किया जाता है, अर्थात समर्पण समारोह किया जाता है। ज्यादातर ऐसे होते हैं। तो हमारा विवाह तो बाबा के साथ हो गया है, लास्ट है अंतिम संस्कार। शादी करके भी हम कुमार है, यही सुकुमार है, लास्ट है अंतिम संस्कार अर्थात जीते जी मरे हुए, कर्मातीत स्थिति, कर्म करते कर्म के प्रभाव से न्यारे। ये थी हिंदू सनातन धर्म के 16 संस्कार। अभी जो पास्ट के संस्कार जो हमें दुख देते हैं उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे। तो पास्ट के दुख देने वाले संस्कार आज भी बाबा ने मुरली में कहा है कि सबसे बड़ा विकार कौन सा है, तो देह अभिमान का, देह भान का, और दूसरा नंबर बताया काम का। तो देह का देखने का संस्कार ये हमारा पास्ट संस्कार है, जो आज तक न किसी को सुख दिया है और न कभी दे सकते, उनका स्वभाव ही नहीं है सुख देने का। फिर भी बार बार हम क्या करते हैं, तो देह को देखते हैं। हमको पता है कि काम विकार नर्क का द्वार है, फिर भी बार बार व्यक्ति उसी तरफ धक्का देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, धकेलता रहता है। क्रोध ब्राह्मण के अंदर भी है, जबकि रोज मुरली सुनते, अमृत वेला करते, ब्रह्मा भोजन करते, ट्रैफिक कंट्रोल करते, फिर भी क्रोध नहीं जाता है। बाबा कहते हैं सोचने का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन फिर भी ब्राह्मण सोचना तो है लेकिन अनावश्यक सोचते रहते हैं। ये संस्कार बन गया है सोचने का, और अनावश्यक ही करते रहते, जरूरत नहीं फिर भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। एक सन्यासी के लिए कहते ना, उनको संस्कार था चोरी का, लेकिन वो सन्यास का महात्मा बन गया, सन्यासी बन गया, फिर क्या करते, रात में दूसरे का कमंडल इधर से उधर करते थे। तो संस्कार बन गया है इधर से उधर करने का, कुछ न कुछ करने का, टाइम वेस्ट करने का, काम कुछ नहीं, लिखना ऐसे ही फालतू थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कुछ भी नहीं, जो 2 मिनट में होगा उसके लिए 10 मिनट भी लग जाता है। पर चिंतन प्रदर्शन का संस्कार बन गया है आत्मा के अंदर। पर चिंतन के बगैर तो भोजन हजम ही नहीं होता है, प्रदर्शन के बगैर तो दिन ही नहीं बीतता है। आत्मा का बन गया है संस्कार, ये छुई मुई का संस्कार, छोटी मोटी बात में खुद डिस्टर्ब होंगे, दूसरों को डिस्टर्ब कर देंगे, अपसेट होते रहते हैं, नहीं चाहते तो भी हो जाते, गपशप मारना, क्रोध करना, हमने बता दिया, दूसरों के कारोबार में इंटरफेयर करना, टांगा अड़ाना, क्योंकि हमारे में भी इंटरफेयर किया था इन्होंने, टांगा अड़ाया था, हम कैसे छोड़ेंगे, वो आगे जा रहा है, कुछ करेंगे तभी तो थोड़ा सा नीचे होगा। दूसरों को देखने की संस्कार, कब उठा, कब गया, क्या किया, कहां गया, कहीं दूसरों को ही देखना, बदले लेने की संस्कार, बदला लेने की संस्कार, बाबा कहते बदल के दिखाओ और हम बदला लेते रहते हैं, वो भी ब्राह्मण बच्चा। दूसरों को गिराने की संस्कार, दूसरों के सामने खुद को अच्छा कर दिखाने के संस्कार, नाम मान शान के पीछे जाने की संस्कार है, तो बहुत लंबी लिस्ट, लेकिन हमने इतना निकाला है, ये हमारे पास्ट के संस्कार हैं। आत्मा के अंदर अनादि संस्कार, ओरिजिनल संस्कार, जो बाबा का संस्कार है, जो शिव बाबा का संस्कार, वही हमारा है। लेकिन आत्मा जब परम धाम में रहती है तो उस समय उस संस्कार को कोई कार्य में यूज नहीं होता है, और सत्युग त्रेता के अंदर में जब आत्मा आती है तो कर्म अकर्म मान जाते हैं, वो संस्कार आत्मा के अंदर में लिपटती नहीं है, लेकिन द्वापर के बाद में कर्म का फल मिलता है, इसीलिए वो संस्कार हमारे अंदर लिपट जाती है। तो वर्तमान समय हमारा कौन सी संस्कार होना चाहिए, तो वर्तमान समय हमारा सैंपल कौन है, ब्रह्मा बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा का जो ओरिजिनल संस्कार है वही हमारा संस्कार होना चाहिए। तो कुछ ऐसी पॉइंट है जो ब्रह्मा बाबा के संस्कार हम निकाले जो हमारी होनी चाहिए। तो पहला संस्कार है बाबा का एक नामी और इकोनॉमी का संस्कार। ब्रह्मा बाबा हमेशा एक नामी शिव बाबा के ही याद में लगन में मगन रहते थे, एक के याद में खोए हुए रहते थे, और हमेशा ब्रह्मा बाबा बच्चों को एक के ही लगन में मगन, एक के ही याद में, एक के ही में ही बुद्धि टिकाने के लिए कहते थे। अपने में बाबा कभी नहीं फंसाते थे। बाबा से अगर कई बच्चे कहते थे कि बाबा हमारे हम आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते, बच्चे बाबा कहते थे बच्चे इस शरीर का फोटो आएगा, शिव बाबा का तो फोटो आने वाला नहीं है, इसलिए क्या जरूरत है, पांच तत्वों की शरीर की फोटो निकालने की जरूरत नहीं है। और बाबा का हमेशा लक्ष्य रखता था कि चीज अच्छी हो लेकिन सस्ती हो। इकोनॉमी से बाबा यज्ञ को चलाते थे, और इकोनॉमी का पाठ अपने बच्चों को भी बाबा ने सिखाया। बाबा के अंदर में कूट कूट कर त्याग के संस्कार भरे हुए थे। बिना त्याग के भाग्य की प्राप्ति नहीं होती है, और बाबा के हर कर्म से, हर संकल्प से, हर व्यवहार से अभी भी हम त्याग की, त्याग जो है ना आईने की आईने में एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। उसी त्याग के कारण से ही सारी दुनिया के अंदर, बाबा के त्याग के कारण ही सारी दुनिया के अंदर पांडव भवन की नाम सबसे क्या है, ऊंचा है, क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा के कर्म भूमि, चरित्र भूमि, तपस्या भूमि, त्याग भूमि है। बाबा हमेशा बाबा के अंदर में आज्ञाकारी और वफादारता के संस्कार थे। सदा शिव बाबा के आज्ञाकारी होकर के रहे, यज्ञ के प्रति वफादार होकर के रहे। अपने लिए बाबा कभी भी कोई सेलिब्रेशन नहीं लिया। जब नया मकान बना तो बच्चों ने कहा बाबा ये आपके लिए, बाबा ने कहा शिव बाबा ने पुराना मकान लिया तो ब्रह्मा कैसे नया मकान में जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, नया रूम चाहिए, थोड़ा भी जरा भी अच्छा नहीं लगता है, कहते हैं। तो ऐसे हमें भी ब्रह्मा बाबा के समान आज्ञाकारी और वफादारिता का संस्कार अपने अंदर लाना है। बाबा सदा हाजी करते थे, हाजी के संस्कार बाबा के रग रग में समाया हुआ था। जैसे ब्रह्मा बाबा के अंदर में समाया था, वैसे ब्रह्मा बाबा ने हमारी दादियों के अंदर में भी भरा और हमारी दादियां हमारे बड़ों के अंदर में भरा। वही हाजी का पाठ हमें भी पक्का करना है, वही संस्कार हमें भी धारण करना है, क्योंकि हम उनके वारिस है, उनके ही आशा का पूर्ण करने वाला है, क्योंकि बाबा ने हमें चुना हुआ है। एक की लगन में मगन तो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है। बाबा के अंदर में नष्टो मह के संस्कार भी भरपूर रूप में थे। कोई ज्यादा सेवा करे, कोई कम सेवा करे, ऐसा नहीं। कोई कैसा भी हो, हमने सुना है कि बाबा के साथ जब बच्चा गेम खेलते थे तो हारने वालों को डबल टोली मिलता था, जीतने वालों को एक मिलता था। अर्थात बाबा को ऊंचाई उठाने की कितनी बड़ी भावना थी। किसी में मोह नहीं, किसी में लगाव नहीं, किसी में झुकाव नहीं, ऐसे हमारी दादियां भी के अंदर भी ऐसे ही संस्कार है और हमें भी ऐसे संस्कार धारण करना है। बाबा के अंदर सदा सबको आगे बढ़ाने की भावना रहती थी, खुद बैकबोन रहते थे, हमारी दादियां को मम्मा को आगे बढ़ाते थे। अगर हमारे परिवार में हमारे सेवा स्थान पर अगर कोई आगे बढ़ता है तो हमारे अंदर में ईर्ष्या की अगर भावना उत्पन्न होती है तो ये उस बाबा की इंसल्ट है, उस परिवार की इंसल्ट है। इसलिए हमारे अंदर सदा हरेक को आगे बढ़ाने की भावना होनी चाहिए। बाबा के अंदर में सबको, संसार को, ज्ञानी अज्ञानी सबको सहयोग देने की भावना थी। हरेक को बच्चा कहते थे बाबा। हमने सुना है कि एक बार कैलाश दीदी, शायद कैलाश दीदी अहमदाबाद की, गुजरात की कैलाश दीदी ने सिक्योरिटी वालों को से डंडा लेके सांप को मार दिया। फिर बाबा को पता चला कि कैलाश बच्ची ने सांप को मारा है और जान से मार दिया, तो बोला बच्चा को क्यों मारा आपने? तो बाबा ने कहा बच्चा को आपने क्यों मारा? तो दीदी कहती है बाबा मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो सिर्फ सिक्योरिटी वाले भाई से डंडा लेके सांप को मारा। तो बोला बच्ची ये बाबा का बच्चा नहीं है, सांप को भी बच्चा कहते थे तो चिड़िया को भी बाबा बच्चा कहते थे, बच्ची कहती थी। बाबा जब थे, तपस्या करते थे जब छोटे हॉल में कुटिया में, तो उस समय चिड़िया आते थे और बाबा दाना रखते थे और बाबा के हाथ से दाना खाया करती थी चिड़िया। जिस दिन नहीं आती थी तो कहती थी आज बच्ची नहीं आई है अपना दाना खाने के लिए। और जब बाबा अव्यक्त हुए तो कई दिनों तक चिड़िया आती रही और घूम घूम कर चली गई। फिर तो बाबा, उनको पता चल गया कि बाबा भी नहीं है, तो फिर आना बंद कर दिया। ऐसे बाबा क्या करते थे, सबको आगे बढ़ाने के संस्कार थे बाबा के अंदर, और वही सबको सहयोग देने के संस्कार थे, और हमें भी उस सहयोग देने के संस्कार को अपने में धारण करना है। बाबा हर एक बच्चा, कोई कितना भी गलती करे लेकिन बाबा माफ कर देते थे। बाबा कहते थे माफ करो, दिल साफ करो। बाबा माफ कर देते थे और हमें भी माफ करने का संस्कार डलवाते हैं बाबा मुरली के द्वारा। बाबा को कितना अपोज किया, बाबा के धोती के ऊपर में हम सुने हैं कि कई बार कचरा डाल दिया, फिर भी बाबा कहते थे बच्चे ये तो बच्चा है, नादान है। ऐसे हमें भी माफ करने के संस्कार अपने में बाबा जैसे धारण करना है। बाबा हमेशा, बाबा के अंदर में संस्कार रहता था हमेशा देने की संस्कार, देने की संस्कार। देते जाओ देते जाओ देते जाओ। वैसे यहाँ स्थूल देने की बात नहीं है, सूक्ष्म देने की बात है। जब हम सूक्ष्म देते हैं तो स्थूल की कमी हमारे पास नहीं रहती है, इसीलिए बाबा हमें देने के लिए सिखाया है, क्योंकि तुम कौन हो, देने दाता के बच्चे देवता हो। तो ये संस्कार अगर हम धारण करते हैं तो हमारे पास्ट के जो संस्कार है अपने आप ही उनसे हमारी मुक्ति मिल जाता है, छुटकारा मिल जाती है, उससे हम स्वतंत्र हो जाते हैं। और उसके लिए थोड़ा सा और जो और गहराई में जाने के लिए, इतना करते हुए अगर हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, एकांत में जाते हैं, रोज का रोज अपनी डायरी रखते हैं, तो क्या हमारे पास्ट के संस्कार हमारे पास रह सकती है? नहीं रह सकती है। इसीलिए हमें पास्ट के संस्कारों से मुक्ति पाने के लिए इन सब बातों पर ध्यान देना है। ओम शांति।
जितना अच्छा सोचोगे उतने अच्छे बनोगे,
जितना अच्छा सोचोगे उतने अच्छे बनोगे,
जितना मीठा बोलोगे उतने मीठे बनोगे।
ये राज है का, ये साज है मन का,
ये राज है जीवन का, ये साज है मन का।
जितना अच्छा सोचोगे उतने अच्छे बनोगे। दुनिया में आए थे जब हम, क्या लेकर आए थे,
दुनिया में आए थे जब हम, क्या लेकर आए थे।
जाएंगे जब दुनिया से तो सोचो क्या लेके जाएंगे,
फिर मेरा क्यों करते हैं, क्या इसी से झोली भरते हैं,
फिर मेरा क्यों करते हैं, क्या इसी से झोली भरते हैं।
जितनी खुशियां बांटोगे उतना सुखी बनोगे,
जितना सफल करोगे उतना सफल बनोगे।
ये राज है जीवन का, ये साज है मन का,
ये राज है जीवन का, ये साज है मन का।
जितना अच्छा सोचोगे उतने अच्छे बन